ओम शांति, ओम शांति। आप सभी पिछले दो दिनों से राजयोग शिविर के सत्र सुन रहे हैं और आपने समझा कि राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से स्नेहपूर्ण संबंध, स्वयं की सत्य पहचान, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ जो अजर अमर अविनाशी है, ये आपने प्राप्त की। और साथ साथ परमात्मा का भी सत्य परिचय आपने प्राप्त किया है। राजयोग को हम राजयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है और इसे सिखाने वाला कोई गुरु या संत नहीं लेकिन स्वयं परमात्मा है। स्वयं परमात्मा शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वो राजयोग की शिक्षा देते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ संबंध है, सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है। परमात्मा सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। कल आपने समझा विस्तार से कैसे वो सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है, उनके साथ संबंध, वो हमें सबसे ऊंची प्राप्ति कराता है क्योंकि मनुष्यों के साथ संबंधों से भी हमें प्राप्ति होती है, तभी हम समाज में रहते हैं, उनसे हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लेकिन वो परिवर्तनशील है, जो व्यक्ति आज हमें स्नेह देता है वो कल हमसे नफरत भी कर सकता है, जो हमें सुख देता है वो हमें कभी दुख भी दे सकता है, जो हमें सम्मान करता है वो कभी हमारा अपमान भी कर सकता है। तो दूसरे ही नहीं, हम भी ऐसा व्यवहार करते हैं, हम भी कभी ऐसा करते हैं, कभी हम सुख देते हैं तो कभी हम दुख भी देते हैं। लेकिन ईश्वर सदा एक रस है, वो कभी सुख दुख शांति और शांति में नहीं आता, वो सदा ही शांति का दाता है, वो सदा ही सुख का दाता है, वो सदा ही प्यार का सागर है, वो सदा ही आनंद का सागर है। इसीलिए उसकी याद सदा सुख देने वाली है। जब भी ईश्वर के साथ हमारा संबंध होता है तो हमें सुख शांति की प्राप्ति सदा ही होती है। राजयोग इसलिए भी राजयोग है क्योंकि ये हमें कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है। सामान्यतः हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी हमारी कर्मेंद्रियां हमें जिस दिशा में चलाती हैं वैसे ही हम चलते हैं। तो जो हमें नहीं देखना चाहिए हम वो भी देखते हैं, जो हमें नहीं सुनना चाहिए वो भी हम सुनते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी हम बोलते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करते हैं। तो कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब राजयोग से हमें ईश्वरीय शक्तियां मिलती हैं तो कर्मेंद्रियों के हम अधिकारी बनते हैं। राजयोग अनेक राजों को अपने अंदर लिए हुए हैं, राज अर्थात रहस्य, उन रहस्यों को समझने के बाद ही हम राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आत्मा का राज समझा हमने, परमात्मा का, ईश्वर का राज समझा हमने, ऐसे ही कल आपको इस सृष्टि का, चक्र कैसे चलता है, समय चक्र कैसे चलता है, उसमें कैसे परिवर्तन आता है, वो राज भी समझाया जाएगा। तो राजयोग में हम इन सब राजों को जानने के बाद योग अभ्यास करते हैं। तो ये सभी योगों का फल देने वाला है, जितने भी योग भारत में किए जाते हैं। अगर हम राजयोग करते हैं तो हमें फिर कोई और योग करने की आवश्यकता नहीं है, सभी योग इसमें समाये हुए हैं, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ योग है। तो राजयोग ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, संन्यास योग, समत्व योग, हठ योग, यही योग हैं जो भारत में किए जाते हैं। ज्ञान योग है क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। हम इसमें समझते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर कौन है, उनका स्वरूप, उनसे संबंध, उनसे प्राप्ति, इसके बाद ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। कोई अंधश्रद्धा नहीं है और इसीलिए ये ज्ञान योग है। ये बुद्धि योग भी है क्योंकि राजयोग में हम परमात्मा से संबंध का अनुभव मन और बुद्धि के द्वारा करते हैं। मन और बुद्धि सूक्ष्म माध्यम है, सूक्ष्म माध्यम है अर्थात हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी संबंध होता है, क्योंकि जब हम ईश्वर के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारी विचार तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं। ये इनविजिबल कम्युनिकेशन है। आज के साइंस के जमाने में हम इनविजिबल कम्युनिकेशन के अनुभवी हैं। आज हम मोबाइल यूज करते हैं, देश के क्या विश्व के किसी भी कोने में हम जिससे बात करना चाहें कर सकते हैं। तो दिखाई देने वाला तो कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी बात कैसे होती है, जैसे सामने ही बात कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है, मेरे मोबाइल सेट से कुछ तरंगे निकलती हैं जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, वो टावर से होते हुए दूसरे के सेट तक पहुंचती हैं और वहां से भी वही प्रक्रिया रिटर्न में होती है और इस तरह से हम आपस में बातचीत कर पाते हैं। आज हम रिमोट यूज करते हैं हर काम के लिए, टीवी चलाना है और भी कई साधन है जिसमें रिमोट का प्रयोग होता है। आज एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है, कंट्रोल रूम से रिमोट के माध्यम से वायरलेस कम्युनिकेशन होता है सब। तो दिखाई देने वाला कोई कम्युनिकेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जब भौतिक स्तर पर संभव है तो फिर मन की भी इतनी शक्ति है कि जो हमारी विचार तरंगे हैं वो ईश्वर तक पहुंचती हैं। यूं भी दुनिया में भी हम टेलीपैथी के अनुभवी होते हैं, किसी को हम बहुत बहुत दिल से याद करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन करने से पहले या बात करने से पहले ही उनका फोन हमारे पास आ जाता है और हम क्या बोलते हैं, हमने अभी आपको याद किया, हम आपको ही याद कर रहे थे। तो क्या पहुंचा, हमारा विचार उन तक पहुंचा और उसका रिप्लाई हमें उस माध्यम से। तो परमात्मा के साथ भी हमारा संबंध इस माध्यम से होता है, इसीलिए मन को अंतर चक्षु भी कहते हैं, यानी तीसरा नेत्र है। इन दो नेत्रों से जो हम नहीं देखते वो हम अंतर चक्षु से देखते हैं। आत्मा और परमात्मा को हम इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। कौन से नेत्रों से देखते हैं, मन रूपी अंतर चक्षु से हम न सिर्फ देखते हैं लेकिन उनको अनुभव भी करते हैं। भक्ति में भी हम अनुभवी हैं, भगवान से जो हमारा संवाद होता है वो मन के माध्यम से ही होता है। भले ही हम मंदिर में खड़े हैं, जड़ मूर्ति के सामने हम खड़े होते हैं क्योंकि हमें पता है कि मूर्ति तो जड़ है, मूर्ति तो नहीं सुनती है, लेकिन फिर भी मन के भाव कहाँ व्यक्त करते हैं, कहाँ व्यक्त करते हैं, मूर्ति के सामने। और फिर जब हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाती है या जो भी हमने भाव व्यक्त किए वो हमें अनुभव होते हैं तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने मेरी सुन ली। तो कैसे सुन ली, हमने क्या समझा कि भगवान जहां भी है उस तक मेरे दिल की बात पहुंच गई और इसीलिए मेरे वो मनोभाव पूरे हो गए। तो भक्ति में भी हम मन के माध्यम से ही भगवान से संवाद करते हैं, तो राजयोग में भी मन ही माध्यम है। तो इस तरह से ये बुद्धि योग है जिसमें हम बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करते हैं और मन के द्वारा चिंतन करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई बात जब हम सोच रहे होते हैं तो उसके साथ साथ विजुलाइजेशन भी चलता है। विजुलाइजेशन चलता है माना अगर मैं आपसे अमेरिका की कोई बात कर रही हूँ तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं लेकिन मन से अमेरिका को देख भी रहे हैं, वो चित्र भी आपके मन के सामने आता जाता है, उसको विजुलाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही राजयोग भक्ति भक्ति योग से पहले कर्म योग भी है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए परमात्मा की याद। चाहे हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे भले ही हम अपने दैनिक कर्म करते हैं, दैनिक कर्म माना उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, भोजन करना, तो ये सब कर्म करते हुए भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि इन कार्यों में हमें बहुत अधिक बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, इन कार्यों के हम अभ्यस्त होते हैं। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं जहां हमें बुद्धि लगानी है तो हो सकता है कि हमारी बुद्धि उसमें व्यस्त है और उस समय हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर सके, लेकिन साधारण कर्म करते हुए यहाँ तक कि भोजन बनाते हुए भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। अब हमें जब सब्जी बनानी है तब उसमें जो नमक डालना है या मिर्ची डालनी है, जो मसाले डालने हैं, वो कुछ मिनट का काम होता है और उसके बाद मन अपना कार्य करता है, हाथ अपने कार्य करते हैं। या रोटी बेलनी है तो हम इतने अभ्यस्त होते हैं कि मन अपना काम करता रहता है, हाथ अपने काम करते हैं। तो ऐसे समय पर मन को सिर्फ ईश्वर की तरफ मोड़ना, इसलिए कहते हैं मन हमसे सिर्फ एक, परमात्मा हमसे सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर है। सिर्फ विचार बदला और उसे ईश्वर के प्रति किया तो वही योग हो जाता है। इतना सहज है राजयोग, इसीलिए इसको सहज राजयोग कहते हैं। यानी इसके लिए हमें बैठ करके कोई कठिन आसन लगाना है या कठिन क्रियाएं करनी है या कोई कठिन मंत्रों का जाप करना है, वो नहीं। सिर्फ मन को ईश्वर में लगाना है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को याद करता है, सहज याद है, और जिन कारणों से भी याद करता है मन स्वतः ही उनकी ओर चला जाता है। तो जहां भी संबंधों में स्नेह है वो याद स्वतः होती है। तो राजयोग में भी इसी प्रकार से हम परमात्मा को याद करते हैं। जब हम ईश्वर की याद में कर्म करते हैं तो वो कर्म सत्कर्म बन जाते हैं। सत्कर्म अर्थात वो कर्म हमें एक का पदम गुना फल देने वाले होते हैं। सामान्यतः कर्म सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, एज यू सो सो यू रीप, यानी एक किया तो एक ही मिलेगा। लेकिन एक का कई गुना, एक का पदम गुना माना इतना अधिक वो फल हो जाता है जो परमात्मा की याद में कर्म किए जाते हैं। ये इसी तरह से है जैसे हम आम का बीज बोते हैं। कई प्रकार के बीज होते हैं, कर्मों की तुलना बीज से की जाती है। अगर हमने गेहूं का बीज बोया तो एक गेहूं से अनेक गेहूं होंगे, लेकिन एक फसल हमें मिलेगी। और फिर अगर हमें दोबारा गेहूं चाहिए तो फिर से हमें गेहूं बोना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने आम का बीज बोया तो हमें तुरंत फल नहीं मिलने वाला, हमें इंतजार करना पड़ता है कुछ वर्षों तक। और इंतजार के बाद जब फल मिलेगा तो सिर्फ एक सीजन नहीं, कितने सीजन, अनगिनत। उस फल की हम गिनती नहीं कर सकते, इतना आम का फल हमें प्राप्त होगा, उसे हम पदम गुना कहते हैं। तो कई कर्म हमारे तुरंत फल देने वाले होते हैं और कोई कर्म हमारे संचित होते हैं, कुछ समय के बाद फल देने वाले होते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, जो भाग्य का रूप लेते हैं। कई बार जिसे हम नहीं समझ पाते कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है जो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। तो राजयोग से हम दोनों ही प्रकार के फल अनुभव करते हैं। तुरंत फल भी मिलता है, ईश्वर की याद में कर्म किया तो हमें वो खुशी शक्ति शांति का अनुभव होता है, वो तुरंत फल। और संचित फल यानी जन्म जन्मांतर तक आत्मा उस भाग्य को संस्कारों के रूप में लेकर अपने साथ जाती है। तो एक जन्म नहीं है, अनेक जन्मों तक हम उस फल को खाते हैं। तो इस तरह से राजयोग को हम कर्म योग के रूप में कर सकते हैं। राजयोग भक्ति योग भी है, हम सभी भक्ति करते हैं किसी ना किसी रूप में। और भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का भाव। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम संबंधों के आधार पर होता है। तो जो भी परम भक्त हुए इस दुनिया में, उन्होंने भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध का अनुभव किया। और इसीलिए भक्ति में हम गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। या ईश्वर के साथ हमारे सर्व संबंध हो सकते हैं। तो ये देखने में आता है कि जब वो संबंध का हम ईश्वर के साथ अनुभव करते हैं तो हमें वो प्राप्ति का भी अनुभव होता है। इसीलिए भक्तों को जब भी कष्ट हुआ, उन्होंने भगवान को याद किया तो उनकी मदद उन्हें मिली। मीराबाई ने जब उसे याद किया, वो उसे पति के रूप में याद करती थी, तो याद किया तो जहर का प्याला भी क्या हो गया? द्रौपदी का गायन है, जब उसने याद किया तो परमात्मा की मदद उसके लिए हाजिर हो गई। ऐसे सभी भक्तों की मिसाल है। भक्त प्रहलाद ने उन्हें पिता के रूप में याद किया तो जब भी उसको मारने की कोशिश की गई, हर समय उसकी रक्षा हुई। तो ये भक्ति योग भी है, क्योंकि राजयोग में परमात्मा को हम सर्व संबंधों से याद करते हैं। जिस संबंध से हम उसे याद करना चाहें, वो हमारा माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है, स्वामी भी है, साजन भी है, दोस्त भी है, जो भी हम संबंध उनसे अनुभव करना चाहें वो हम उनसे अनुभव करते हैं। ये संन्यास योग भी है। जब हम संन्यास की बात करते हैं तो थोड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ है घर बार छोड़कर के कहीं तीर्थ पर जाकर या जंगल में जाकर भगवान के ध्यान में अपना जीवन बिताना। तो हम जब ज्ञान की ओर आने की बात करते हैं तो फिर ये प्रश्न मन में उठता है कि कहीं हमें कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारा स्वभाव क्या होता है? हम पाना चाहते हैं, प्राप्ति चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। या हमारे कोई संबंधी भी ज्ञान की ओर आते हैं तो भी हमें एक संशय होता है, कहीं ये सब कुछ छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन राजयोग में परमात्मा हमें घर गृहस्थ का, जिम्मेवारियों का, कर्मों का, संबंधों का त्याग नहीं सिखाते। वो संन्यास हमें नहीं सिखाते। जरूर हम संन्यास करते हैं, लेकिन वो संन्यास बुराइयों का संन्यास या विकारों का संन्यास है। ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही मनुष्य के जीवन में विष खोलते हैं, मनुष्य को दुखी करते हैं, और हम इन्हें छोड़ना ही चाहते हैं। लेकिन हमें विधि नहीं मालूम कि हम कैसे इनको छोड़ें। परमात्मा हमें सिर्फ वो विधि बताते हैं। और हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, कर्मों को छोड़ने की बजाय कर्मों में श्रेष्ठता कैसे लाई जाए, व्यवहार में हम श्रेष्ठता कैसे लाएं, हमारा जीवन दिव्य कैसे बने, ऊंच कैसे बने, वो मार्गदर्शन हमें परमात्मा के द्वारा मिलता है। नहीं तो हम देखते हैं लोग संन्यास करके चले जाते हैं, लेकिन अगर वो विकारों का संन्यास नहीं कर पाए तो संन्यास को भी बदनाम करते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कई संत जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? भले दुनिया से संन्यास किया लेकिन विकारों का संन्यास नहीं कर पाए, तो संन्यास बदनाम होता है उससे। तो राजयोग हमें ऐसा संन्यास नहीं सिखाता। लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए बुराइयों का त्याग, ये उस संन्यास से भी महान संन्यास है, जिसे हम कहेंगे बेहद का संन्यास है, जो भगवान हमें सिखाते हैं। और फिर ये समत्व योग भी है। समत्व स्थिति का वर्णन गीता में किया गया कि योगी स्थिर चित होता है, यानी हर परिस्थिति में समान, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमें हमारी सफलता होती है, कभी हमारी हार भी होती है, कभी हमारी प्रशंसा होती है तो कभी हमारी ग्लानी भी होती है। लेकिन ये स्थितियां मनुष्य को विचलित करने वाली होती हैं। अगर वो सफल होता है, अगर उसकी प्रशंसा होती है, तो वो अहंकार में आ सकते हैं, गर्व में आ सकते हैं। और यदि वो असफल होते हैं या उनकी ग्लानी होती है, दुखी होते हैं, तो फिर बहुत हताश निराश भी हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियां परिवर्तनशील हैं। हम ज्ञान से ये समझते हैं कि ना दुख सदा रहने वाला है और ना ही सुख सदा रहने वाला है। तो जो वक्त है, जो समय है, वो हमेशा गुजर जाने वाला है। तो मन सदा ही शांत रहता है, स्थिर रहता है और मन संतुलित रहता है। योग का अर्थ ये नहीं कोई चमत्कार होने लगेंगे हमारे जीवन में। कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ संत महात्मा ऐसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं। वो कोई मंत्र जपेंगे, जिस वस्तु की इच्छा होगी वो हाजिर हो जाएगी, या वो किसी को भभूत देंगे और कहेंगे आपका ये रोग ठीक हो जाएगा या कष्ट निवारण हो जाएगा। तो कई बार सचमुच ऐसा हो भी जाता है, लेकिन वो मंत्र का परिणाम नहीं, लेकिन लेने वाले की गहरी आस्था होती है जो काम करती है। इसके पीछे आस्था है, मन की स्थिति है। जो मन की स्थिति बदली, उसकी वजह से वो ठीक हो गए या उनकी वो जो कष्ट की स्थिति है वो समाप्त हो गई। लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं होता, किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है, किसी का जीवन श्रेष्ठ नहीं बनता। और इसीलिए राजयोग में हम अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं देते। भक्ति में भी जो सच्चे संत हुए, उन्होंने ऐसी अल्पकाल के चमत्कारों को महत्व नहीं दिया। लेकिन जीवन श्रेष्ठ बन जाए, हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाए, हमारे मन की स्थिति संतुलित रहे, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। ऐसे ही राजयोग हठ योग भी है। हठ योग अर्थात दुनिया में हठयोग का अर्थ है परमात्मा के दर्शन करने के लिए किसी भी प्रकार का हठ करना, माना कोई ना कोई ऐसी क्रिया करना जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो लोग व्रत उपवास रखते हैं, देखते हैं नवरात्रों में 8-8, 9-9 दिन तक निर्जल उपवास रखेंगे और देवी के दर्शन करने के लिए बहुत कष्ट उठाएंगे, पैदल चलकर जाएंगे। पैदल चलकर तो क्या, कई लोग वो दंडवत करते हुए पूरा, जैसे गुलाब आटी खाते हुए जाते ना, कई तरह के मतलब कष्ट देते हैं अपने शरीर को। और यहाँ तक कि अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो हम प्राण भी अपने त्याग देंगे इस तरह से, या कई प्रकार की और भी साधनाएं करते हैं। लेकिन राजयोग में परमात्मा हमें ऐसा हठ नहीं सिखाते। हठ यहाँ अर्थ है दृढ़ता, दृढ़ता से जीवन में परिवर्तन लाना, या किसी भी कार्य के लिए प्रतिज्ञा करना। और प्रतिज्ञा कर ली माना फिर उससे हम हटेंगे नहीं, जिसे हम कहते हैं व्रत लेना। अगर हम भक्ति में भी कोई व्रत लेते हैं तो हम उसे तोड़ते नहीं हैं। व्रत वाले दिन कोई आपको स्वादिष्ट थाली परोस दे भोजन की, तो हम खा लेंगे, उसको खा लेंगे, क्या कहेंगे आज मेरा व्रत है। कितना भी अच्छा भोजन, मेरा मन पसंद भोजन मेरे सामने है, लेकिन व्रत वाले दिन हम उसे छुएंगे भी नहीं, व्रत नहीं तोड़ेंगे, कहीं हमारे भगवान हमसे नाराज ना हो जाए। तो यहाँ भी हम ईश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज चाहे जो हो जाए, पूरा दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है। अब कई कारण होंगे गुस्सा करने के, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई झूठ बोलेगा, या कोई मेरी इंसल्ट कर देगा, या कोई मुझसे कुछ ऐसा कह देगा, ऐसे कई कारण होते हैं जब गुस्सा आता है। लेकिन कोई भी कारण बने, लेकिन मैंने आज भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, ये व्रत लिया है तो नहीं करना है, माना नहीं करना है। तो अगर एक दिन भी हम उसमें सफल हो जाते हैं इस व्रत में, आगे के लिए हमारे अंदर वो आत्मविश्वास आता है कि हम अपनी इस कमी पर विजय पा सकते हैं। तो राजयोग इस प्रकार से हठ योग है। बाकी ईश्वर की प्राप्ति हमें राजयोग में होती ही है, उसके लिए हमें कोई हठ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो भी आधार लेते हैं परमात्मा को याद करने के लिए, वो सब स्थूल आधार है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी श्रद्धा परंपरा के अनुसार, विश्वास के अनुसार भगवान को याद तो करते ही हैं। भारत में तो कोई नास्तिक नहीं होता है। है कोई नास्तिक जो यहाँ सभा में बैठे हैं जो भगवान को ही नहीं मानते हैं? क्या कहेंगे, नहीं है, कोई भी नहीं है ना। तो हम सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमारी विधियां हैं, हम कोई एक चित्र अपने सामने रखेंगे, अपना एक छोटा घर में मंदिर होगा, विशेष दिनों पर हम मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, नहीं तो घर में ही हम दिया बत्ती करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, नियम से कुछ नियम बना लेते हैं अपना, ताकि भाव क्या होता है, भगवान खुश रहे हमसे और सब कुछ ठीक ठाक हमारे जीवन में चलता रहे, इतना ही संबंध हमारा भगवान से है। या जब हमें कोई जरूरत है, कोई दुख है जीवन में, तब हम उसे याद करते हैं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख कहे कोई। तो उतना ही संबंध, समीप का संबंध हम भगवान से अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन राजयोग में हम स्थूल आधारों का प्रयोग नहीं करते। ये जो स्थूल आधार हम लेते हैं, वही आधार जो मन को सहज ईश्वर की ओर ले जाए, जो सूक्ष्म आधार है, वो आधार हम प्रयोग करते हैं। भक्ति में कुछ लोग माला जाप भी करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप भी करते हैं, थोड़ा और ईश्वर से समीपता अनुभव करने के लिए कि हम उसका स्मरण करें तो उसमें माला हमें मदद करेगी। तो फिर माला फेरते हैं भगवान का नाम लेते हुए, जो भी उनके इष्ट हैं या गुरु हैं उनका नाम लेते हुए माला फेरते हैं। शुरू शुरू में मन के फिराते हैं तो थोड़ा मन लगता भी है, लेकिन बाद में वही वही मन के फिराते रहते हैं तो क्या होता है, हाथ के मन के घूमते रहते हैं और मन भी घूमता रहता है। तो कबीर दास जी ने क्या कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरने की बात नहीं है, ये तो मन को फिराने की बात है, मन को बदलने की बात है। मन को बदलो, माला को मत घुमाओ, ये उन्होंने शिक्षा दी। तो शिव बाबा भी हमें यही कहते हैं कि माला घुमाने की, आपको मेरे नाम की माला घुमाने की जरूरत नहीं है। फिर मंत्र जाप करते हैं, तो जो भी मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र संस्कृत में होते हैं, और आज संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, तो फिर हमें उनका अर्थ नहीं मालूम होता। अर्थ नहीं मालूम होता तो हमारे भाव उसके साथ नहीं जुड़ते। जैसे मंत्र जपते हैं ओम नमः शिवाय, या गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः सत्सावितर्वारेण्यं भर्गो देव वस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ कितनों को मालूम है? कितनों को मालूम है? तो अगर हम ये मंत्र जपते हैं और अगर हमें इसका अर्थ नहीं मालूम, तो उस भाव के साथ हम जुड़ते नहीं। फिर हमें कहा जाता है 108 बार इस मंत्र का जाप करो, कई बार 1,00,000 बार तक भी उसको जपने के लिए कहा जाता है। फिर हमारा योग किसके साथ हो जाता है? शुरू शुरू में हम मंत्र जपते हैं तो मन सांसारिक बातों से निकलकर मंत्र में आ जाता है, तो मन को शांति तो जरूर मिलती है। मंत्र का अर्थ ही होता है जो मन को मुक्त करे, जो मन को शांत करे, वो मंत्र है। क्योंकि ये संस्कृत शब्द है मंत्र, जो दो शब्दों से बना है, मन प्लस त्र। त्र का अर्थ होता है मुक्ति। तो मन को मुक्ति देने वाला, यानी सांसारिक जो भी दुख है, अशांति है, उनसे जो हमें मुक्त करने वाला है, वो मंत्र है। तो थोड़ा समय वो शांति अनुभव होने लगती है क्योंकि मन सांसारिक बातों से निकला, लेकिन अब हमें उसे इतनी बार जपना है तो फिर क्या होता है, बुद्धि कहाँ चली जाती है? गिनती में चली जाती है, मंत्र की बजाय गिनती में, कि 108 बार हुआ कि नहीं हुआ, 1,00,000 बार हुआ कि नहीं हुआ। तो हम भगवान का ध्यान भी भूल जाते हैं वो मंत्र का प्रभाव भी नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि गिनती में, गिनती के साथ हमारा योग हो जाता है। ओम नमो शिवाय का हम जाप करते हैं, उसका अर्थ है मैं शिव को नमन करती हूँ, मैं शिव को नमन करती हूँ। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन, फिर मुझे पता होना चाहिए कि शिव कौन, तभी मेरा नमन शिव तक पहुंचेगा। अगर मुझे ज्ञान ही नहीं है कि शिव कौन है, कहाँ है, तो क्या मेरा नमन उन तक पहुंच पाएगा। तो राजयोग में हम जो भी विचार करते हैं वो एक मंत्र की तरह है। मंत्र का एक अर्थ और भी होता है संस्कृत में, सलाह देना। जैसे मंत्री का अर्थ होता है सलाहकार, मंत्रणा माना सलाह, तो मंत्र माना मन को सलाह देना। हम अपने मन को खुद ही सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? जो हमने ज्ञान समझा, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं इस सृष्टि मंच पर परम धाम से आई हूँ, मेरा असली घर वो है और मैं स्वभाव से शांत स्वरूप हूँ। तो ये हर विचार ही एक मंत्र की तरह है और हम अपने मन को सलाह दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मेरा सत्य स्वरूप क्या है। तो संबंधों में याद का जो सूक्ष्म आधार होता है वो है परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। किसी की भी याद हमें आए उसके लिए उसका परिचय होना जरूरी है। बिना परिचय के हम इस दुनिया में किसी को याद नहीं कर सकते। कर सकते हैं, इस दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, हम कितनों को याद करते हैं, कितनों को याद करते हैं, उतने ही जितने हमारे परिचय के दायरे में है। और उसमें भी सबसे अधिक हम किसको याद करते हैं? परिचय से बढ़कर फिर संबंध, जो मेरे संबंध में है। और उससे भी अधिक हम किसको याद करते हैं? जिससे मेरा स्नेह अधिक है। संबंध में भी जिससे स्नेह अधिक है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें बहुत स्नेह होता है, जैसे माता पिता और बच्चों का संबंध है, नेचुरल याद होती है उसके अंदर। पति पत्नी का संबंध है जैसे, उसमें भी नेचुरल याद होती है। तो कुछ जो समीप संबंध होते हैं जिसमें अधिक स्नेह होता है उसमें याद अपने आप आती है। और जहाँ प्राप्ति है तो राजयोग में हम इन आधारों का प्रयोग करते हैं। अपने परमात्मा शिव का परिचय प्राप्त किया, किया सभी ने, हाँ, शिव बाबा का परिचय मिला, शिव बाबा का स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है, कल सुना ना, कल के सत्र में परमात्मा का सत्य परिचय। जिसको भी याद है वो थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में। और गुणों में? गुणों में सिंधु है, सागर के समान है। तो अब हम समझ गए कि ईश्वर का स्वरूप, धाम, नाम, काम सब तो परिचित हो गए उनसे, लेकिन संबंध में हम कब आएंगे अधिक? जब हम उन्हें याद करेंगे। तो हम जो याद करते हैं वो तीन प्रकार की याद होती है, तीन प्रकार की याद है। हम याद करते हैं, याद आती है और याद सताती है। हम याद करते हैं उनको जिनसे हमारा कोई स्वार्थ होता है, कोई काम होता है, अगर ये मिल जाए तो मेरा काम पूरा हो जाए, या हमारे घर में कोई उत्सव है, कोई अवसर है तो हम याद करते हैं। हमारे जो भी संपर्क में है, परिचय में है, वो सब को हमें निमंत्रण देना है, अगर कोई रह गया तो कोई नाराज ना हो जाए, तो हमने याद किया। ये करने वाली याद। हमें याद आती है उनकी जो हमारे समीप है, जो स्नेही है उनको, उनकी याद आती है। और याद सताती है, दुखी करती है, माना जिसको हम याद करें और दुख हो जाए। वो याद तब आती है जब कोई व्यक्ति हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाता है, मानो या तो उसकी मृत्यु हो गई। अब जब भी हम याद करेंगे उसको, याद करके हम दुखी होंगे, या फिर वो छोड़कर कहीं दूर चला गया, मानो बच्चा विदेश में रहता है और माँ को पता चलता है कि वो बीमार है। अब एकदम तो विदेश नहीं जा सकते, तो फिर उसको याद कर करके दुखी होंगे कि उसने डॉक्टर को दिखाया, ठीक तरह से दवाई खा रहा होगा नहीं खा रहा होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, तो दुख देने वाली याद। परमात्मा की याद इन तीनों प्रकार की याद में से कौन सी होनी चाहिए? याद करें, याद आए या याद सताए? पहली याद, हाँ, जिसका विचार है पहला नंबर याद करें वो हाथ उठाए। अच्छा, और जो समझते हैं ईश्वर की याद आए हमें स्वाभाविक आनी चाहिए वो हाथ उठाए। अच्छा, और तीसरा जो समझते हैं ईश्वर की याद सताती है वो हाथ उठाए। सताती है, दुख देती है। अच्छा ठीक है, तो मैच्योरिटी है ईश्वर की याद हमें आए, तो वास्तव में ईश्वर की याद हमें आनी चाहिए। ईश्वर की याद हमें कभी सताती नहीं है, क्योंकि उसकी याद कभी दुखदायी नहीं है, उसकी याद सदा सुखदायी है, सुख देने वाली है। और एक बार हम ईश्वर से परिचित हो जाते हैं तो वो कभी भी हमसे अलग भी नहीं होता, क्योंकि वो अनादि अविनाशी है, वो मनुष्य की तरह विनाशी नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो हम वास्तव में परमात्मा को याद करते हैं, जो वर्तमान समय है उसमें हमें भगवान की याद आती नहीं है। आती है, अपने आप याद आती रहती है ऐसा तो नहीं है, जब हमें स्वार्थ होता है तभी हम भगवान को याद करते हैं। पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, भगवान पास करा देना, अच्छा अच्छे नंबर दिला देना, पास हो गए फिर अच्छी नौकरी दिला देना, अच्छी नौकरी लग गई फिर अच्छे घर में शादी करा देना, अच्छा शादी हो गई अब अगर बेटा नहीं है तो एक बेटा होना चाहिए, फिर एक अच्छा घर होना चाहिए, फिर एक गाड़ी होनी चाहिए। सारी जीवन हम किसको अर्जी लगाते रहते हैं? सांसारिक प्राप्तियों के लिए, माना इस संसार की जो भौतिक प्राप्तियां हैं उनके लिए, और फिर हम सिर्फ भगवान को अर्जी नहीं लगाते, थोड़ा सौदा भी करते हैं। समझ गए क्या सौदा करते हैं? अगर मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो हम क्या करेंगे? इतने रुपए का प्रसाद या नारियल, जो भी मेरी भावना है। कोई कितना कर सकता है, कोई कितना कर सकता है, जो जितना भी कर सकता है उस श्रद्धा के अनुसार हम कहते हैं भगवान ये हम आपको आपके लिए करेंगे, या इतने व्रत कर लेंगे, इतने उपवास कर लेंगे, ऐसा भी कहते हैं। अब मेरी वो इच्छा पूरी हुई तो भगवान को प्रसाद मिला, और नहीं हुई तो हम उसको मनुष्य की श्रेणी में ले आते हैं। हम सोचते हैं मनुष्य जैसे काम करता है वैसे ही भगवान भी काम करता है। तो अगर हम किसी से मांगते हैं, मानो दुनिया में भी ये मांगना ही हुआ ना भगवान से, तो दुनिया में भी अगर कोई हमसे कुछ मांगता है तो हमें वो पसंद आता है, मांगने वाला पसंद आता है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, मांगन से मरना भला ये सदगुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। एक भिखारी हमारे सामने आएगा तो हम जज करेंगे उसको, ये भीख मांगने लायक है भी या नहीं, और नहीं है तो हम सोचेंगे काम क्यों नहीं करता है, भीख क्यों मांगता है। और अगर लगता है सचमुच दया का पात्र है तो कितना नोट निकालेंगे, कितना नोट निकालेंगे? सबसे कम नोट जो मेरे पॉकेट में है वही हम निकाल कर भिखारी को देंगे, यानी मांगने वाला अधिक नहीं पा सकता है, कहने का भाव यही है। तो हम भगवान के सामने जब मांगने के लिए खड़े होते हैं तब क्या भगवान हमें जज नहीं करेगा? क्योंकि उसने पहले से ही हमें इतना अद्भुत मानव शरीर दिया है जिसको असंभव को संभव करने की ताकत है, कुछ भी कर सकता है मनुष्य, जो ठान ले वो अपने जीवन में वो कर सकता है। ऐसी शक्तियां भगवान ने हमें प्रदान की हैं, और हम क्या मांग रहे हैं उससे? संसार की छोटी छोटी चीजें। तो फिर मेरे कर्मों के अनुसार अगर मैं उसे पाने योग्य हूं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और नहीं हूं तो नहीं होगी। तो फिर अगर नहीं होती तो हम भगवान से शिकायत भी करने लगते हैं, फिर उसको कई बार दोष भी देने लगते हैं, जबकि उनका दोष नहीं, दोष किसका होता है, हमारे अपने ही कर्मों का होता है। तो राजयोग में हम भगवान से मांगते नहीं हैं, मांगने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि राजयोग में हम परमात्मा को माता पिता के संबंध से याद करते हैं और माता पिता के बच्चे अधिकारी होते हैं। जो माता पिता का होता है वो सब बच्चों का होता है। बच्चों को अपनी सब चीजें माँ बाप से मांगनी नहीं पड़ती, माँ बाप चिंता कर रहे होते हैं इनको क्या भोजन देना है, उसको कौन से वस्त्र, इसको कौन से स्कूल में, इसका कौन सा कैरियर हो, कौन चिंता करता है, सारी जिंदगी माँ बाप ही करते रहते हैं। अपने बच्चों के पीछे त्याग करेंगे, कष्ट उठाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन बच्चों को कष्ट ना हो पूरा प्रयास रहता है। तो भगवान हमारा अनादि मात पिता है, आत्मा का मात पिता है, और वो संबंध जब हम उनसे अनुभव करने लगते हैं तो वो उनसे भी बेहतर हमारी देखभाल करते हैं, जो हमारे सांसारिक मात पिता भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, जब बिन मांगे मिल रहा है तो क्यों मांगना है। तो जब भी हम याद करें परमात्मा को, उस संबंध से, अधिकार से हम याद करें। संबंधों में समानता के आधार पर समीपता होती है। दुनिया में भी जब हम किसी से संबंध जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये मेरे स्तर का है या नहीं। अगर वो मेरे स्तर का है तो ही हमारी दोस्ती होती है उनसे, हमारे विचार मिलने चाहिए, या कुछ ना कुछ कॉमन, दो डॉक्टर हैं आपस में मिलेंगे तो फ्रेंडशिप हो जाएगी, दो बुजुर्ग व्यक्ति यानी हम कहेंगे सीनियर सिटीजन आपस में मिलेंगे तो समीप आ जाएंगे, दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि कुछ समान है उनके बीच। लोग रिश्तों का भी संबंध करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं तो भी जन्म पत्री मिलाते हैं। तो क्या मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं कि इनके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो अगर गुण मिलते हैं तो योग है, ऐसा कहते हैं योग है, और अगर गुण नहीं मिलते हैं तो योग नहीं है। तो गुणों की समानता, गुणों की समानता है तब ये शादी सफल होगी, और नहीं है तो, जैसे कहते हैं शारीरिक स्तर पर विपरीत लिंग जो है वो आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत का आकर्षण होता है, लेकिन मानसिक स्तर पर समान का आकर्षण होता है, यानी समानता से समीपता होती है। और परमात्मा से हमारा संबंध मानसिक स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर नहीं, वो तो देह से न्यारा है सदा। तो पहली समानता है हमारी ईश्वर के साथ आत्मा के स्वरूप की, कि वो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तो हमारा स्वरूप समान है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हम आत्म चिंतन करते हैं, आत्मिक स्थिति में अपने मन को स्थिर करते हैं, इस देह से, देह की स्मृति से न्यारा करते हैं। जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं तब हमारी फ्रीक्वेंसी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, क्योंकि परमात्मा तो सदा ही निराकार है, और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी तो कनेक्शन नहीं होगा। यानी जो शक्तियां हमें अनुभव नहीं होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए, वो नहीं होंगी। ये इस तरह से है जैसे मानो हमें दो तारों को जोड़ना है तो हम दोनों तारों का रबड़ हटाते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं, अगर रबड़ से जोड़ दिया तो करंट फ्लो होगी। तो यहां भी आत्मा के ऊपर ये जो शरीर है ये एक आवरण है, और जब हम देह समझ करके परमात्मा को याद करते हैं जो हम भक्ति में करते आए, तो हमारे मन की फ्रीक्वेंसी यानी मन की तार ईश्वर से नहीं जुड़ पाती। अगर मुझे कोई रेडियो स्टेशन ट्यून करना है मानो, तो भी हम ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी से उसे मैच करते हैं तभी हम वो स्टेशन सुन पाते हैं, नहीं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मुझे वो स्टेशन सुनाई नहीं देगा, जब तक कि मैंने ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी से उसे मैच नहीं किया है। तो यहां भी परमात्मा का जो स्तर है उस स्तर पर अपने मन को ले जाना, सोल कॉन्शियस स्टेज पर ले जाना। आप दो दिन से अभ्यास कर रहे हैं तो आपको अभ्यास में ये चिंतन दिया जाता है। तो पहला चिंतन आत्म चिंतन है, आत्मिक स्मृति में हम मन को स्थित करते हैं, ईश्वर के समान अपने स्वरूप को बनाते हैं। और दूसरी समानता है धाम की समानता, परमात्मा परम धाम निवासी हैं, तो मैं आत्मा भी परम धाम से ही सृष्टि पर आई हूँ, परम धाम मुझ आत्मा का भी घर है, क्योंकि पिता और बच्चे का घर एक ही होता है। और जब ये समझ हमें आती है तो ईश्वर से समीपता का अनुभव होता है और हम उसे याद करते हैं तो मन परम धाम में चला जाता है, इस संसार से न्यारा होता है। मानो हम मेरे पिता दिल्ली में रहते हैं, एक एग्जाम्पल है कि हमारे माता पिता दिल्ली में रहते हैं और हम उनको याद कर रहे हैं तो मन कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? दिल्ली में। मन का स्वभाव है उसको यात्रा करने में समय नहीं लगता है, कहीं की भी वो यात्रा एक सेकंड में कर सकता है। परम धाम की भी यात्रा कितनी देर में कर सकते हैं हम? सिर्फ परिचय होना चाहिए। तो परमात्मा परम धाम में रहते हैं और जैसे ही मन परमात्मा की याद में हम लगाते हैं, मन परम धाम में, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। किसी से हमें मिलना होता है तो दो तीन तरीके से हम मिल सकते हैं, हम उनको अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं, हम उनके घर में जा सकते हैं, या कोई तीसरा स्थान हम निश्चित कर सकते हैं कि यहाँ हम मिलेंगे। तो अगर हम ईश्वर को यहाँ निमंत्रण देंगे तो ये तो संसार की बातों में पहले ही हम उलझे हुए हैं, तो कभी भी हम इन बातों से निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ मिलना तो वो मिलन का अनुभव होगा नहीं, है ना? तो इसीलिए हम मन को ही संसार से न्यारा करके परम धाम में, परमात्मा का धाम जो शांति धाम है, वहां हम ले जाते हैं। और तीसरी समानता है ईश्वर के साथ गुणों की समानता। परमात्मा सर्व गुणों के सागर है और आत्मा सभी गुणों का स्वरूप है। वो शांति के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो सुखदाता हैं, और हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। तो हम राजयोग में परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए अपने स्वरूप में लाते हैं। हालांकि भक्ति में भी हम परमात्मा के गुणों का ही स्मरण करते हैं। आज अगर हम उनका कीर्तन करते हैं या आरती करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कीर्तन में? क्या कर रहे हैं? ईश्वर की कीर्ति गा रहे हैं, तभी तो उसको कीर्तन कहा गया, क्योंकि वो तो है ही गुणों का सागर, उसके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, तो उसके गुणों की ही कीर्ति गाई जाती है। लेकिन भक्ति में हम क्या करते हैं? थोड़ा मुख से बोलकर, साजों के साथ, आवाज के साथ वो वर्णन हम करते हैं, मनन नहीं करते लेकिन वर्णन करते हैं। और जब हम वर्णन करते हैं तो हमारी शक्तियां बाहिमुखी हो जाती हैं। तो जब तक हम वर्णन करते हैं तब तक कुछ फीलिंग्स होती हैं, और वर्णन समाप्त हुआ हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, वो हमारे स्वरूप में नहीं होती हैं। लेकिन राजयोग में हम ईश्वर के गुणों का स्मरण मनन चिंतन करके करते हैं, मुख से नहीं करते। इसीलिए आपने यहाँ देखा होगा, हाँ, पूरे कैंपस में कहीं आरती नहीं होती है, कहीं पूजा नहीं होती है, कहीं कहीं भक्ति के जो जैसे हम कीर्तन करते हैं इस तरह के कीर्तन नहीं है। लेकिन हम शांति में बैठकर मौन में परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें अनुभव करते हैं। और जैसे ही मन ईश्वर के समीप होता है, उसके गुणों में समाया होता है, तब हम उससे मांगने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि आप सागर के पास जाते हैं तो सागर से क्या ठंडी हवा मांगते हैं? सागर मुझे ठंडी हवा दे दो, जरूरत है सागर के किनारे जाने की, अपने आप ठंडी हवा मिलेगी। अगर हम आग के पास बैठे हैं तो आग से हम गर्मी मांगते हैं? आग के पास बैठे हैं तो गर्मी अपने आप मिलने ही वाली है। ऐसे ही एसी में बैठे हैं तो ठंडक मिलने ही वाली है, मांगने की जरूरत नहीं, उसका गुण है, वो स्वतः ही मिल रहा है। परमात्मा गुणों के सागर है, आत्मा मन से ईश्वर के समीप गई तो स्वतः ही वो गुण उसे स्वरूप में अनुभव होने लगते हैं। तो ये नहीं, कई बार कई भाई बहने कहते हैं, अच्छा बहन जी संसार की जो भौतिक चीजें हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम सुख शांति तो मांग सकते हैं भगवान से, इतना ही हम मांगते हैं कि सदा हम ऐसे ही सुखी रहें, सदा ही जीवन में शांति बनी रहे। तो मांगने की जरूरत है? जरूरत है, जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विधि परमात्मा ने बताई उसे प्राप्त करने की, उस विधि पूर्वक जैसे ही हम उसके समीप जाएंगे अपने आप ही वो सुख शांति का अनुभव हमें होने लगता है। तो जब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं, आत्मचिंतन का प्रारंभ करते हैं, तो हमारा मन बहुत सहज एकाग्र नहीं होता है। एकाग्र नहीं होता है उसका अर्थ है कि मन भटक जाता है, किन्हीं और विचारों में मन सहज चला जाता है, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। मन एक ही विचार में लंबे समय तक नहीं रह सकता, मन की गति बहुत तेज है। एक सेकंड में मन यहाँ होगा, दूसरे सेकंड में मन वहाँ होता है, तो उसके कारण हमें एकाग्रता में मुश्किल आती है। तो शुरू में हमने चिंतन शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तुरंत मन हॉल से बाहर। हॉल से बाहर यानी आज हमें आबू दर्शन के लिए जाना है, साइट सीन के लिए जाना है, सब जल्दी नाश्ता करके इकट्ठे हो जाए, टाइम पर गाड़ी आ जाए, क्या चल रहा है प्लानिंग। फिर याद आएगा अभी तो मैं योग में बैठी हूँ, योग करना है, फिर मन को लेकर आए मैं आत्मा हूँ। फिर कोई बात याद आ गई, कोई बीती हुई बात याद आ गई, किसी की बात याद आ गई, फिर मन उसमें चला गया, फिर मन को घुमा कर लाए, क्या होता है अंतर्द्वंद। तो शुरू शुरू में एक अंतर्द्वंद की स्थिति का हम अनुभव करते हैं कि मन को जिन विचारों में हम रखना चाह रहे हैं मन उन विचारों में ठिक नहीं पा रहा है। तो कई बार इसके कारण सिर भारी हो जाता है, कई बार कोई लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि सिर दर्द होने लग गया, हम 15 मिनट बैठे ध्यान तो लगा नहीं लेकिन और ही सिर भारी हो गया। अब सिर्फ ध्यान से भारी नहीं हुआ, किससे भारी हुआ, जो जो चिंतन हमने किया। और कई बार नेगेटिव बातें बहुत याद आती हैं ऐसे टाइम पर, क्योंकि आप फ्री होकर बैठे हैं ना, जब काम में मन लगा हुआ होता है तब वो बातें इतनी याद नहीं आती क्योंकि मन व्यस्त है। लेकिन जैसे ही आप याद करने के लिए बैठे, योग करने के लिए बैठे, काम से तो फ्री हो गए और योग लग नहीं रहा, तो क्या होना है, जो बातें नहीं याद आनी चाहिए वो सारी बातें उसी समय याद आनी शुरू हो जाएंगी। फिर सोचेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपके साथ ही नहीं हो रहा, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो इसमें हमें निराश नहीं होना है, लेकिन हमारा अभ्यास हम जारी रखें। माना जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं या फालतू विचार आ रहे हैं उसको बहुत ध्यान नहीं देना है, सप्रेस भी नहीं कर सकते हम विचारों को, लेकिन ध्यान नहीं देना है और अपने मन को मोड़ लेना है फिर से। ये इसी तरह से है मानो किसी दीवार को मुझे तोड़ना है और मुझे 100 हथौड़े लगाने पड़ते हैं और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटती है, तो क्या 99वें हथौड़े बेकार गए, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में वो दीवार टूट गई। तो ऐसे ही मन के लिए अभ्यास हमें चाहिए। तो हम जो अभ्यास करते हैं वो अभ्यास हमें धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाता है, कोई भी अभ्यास हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। और एक मिनट के लिए भी अगर हमें शांति का अनुभव हुआ उसके बाद हम खुद प्रयास करेंगे कि फिर से हम योग में बैठें और उस शांति का अनुभव करें। तो ये प्रथम अवस्था से फिर दूसरी अवस्था में मन को ले जाते हैं कि हम परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए परम धाम में परमात्मा के साथ हैं। ये राजयोग अभ्यास की दूसरी अवस्था है जिसे हम कम्युनिकेशन कंटेम्पलेशन कहते हैं। ईश्वर के स्वरूप का दर्शन मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मन रूपी चक्षु से ही हम परमात्मा को देखते हैं और धीरे धीरे उनके गुणों को हम स्वरूप में अनुभव करने लगते हैं। तो अनुभूति की अवस्था में मन चला जाता है जिसे राजयोग अभ्यास की तीसरी अवस्था कहते हैं। ये दूसरी अवस्था है जो गुणों का स्मरण, और तीसरी अवस्था में वो स्वरूप की ईश्वरीय शक्तियां और गुण उतर उतर कर मुझ में समा रहे हैं, और जिस भी संबंध से हम उन्हें याद करना चाहते हैं उस संबंध से भी हम उनकी याद का अनुभव करते हैं। या अपने दिल की कोई बात हम भगवान से कहना चाहते हैं, कोई ऐसा विचार या कोई ऐसा बोझ है मुझ पर, या कोई ऐसी बात जो मुझे चिंता दे रही है या मुझे तनाव का अनुभव करा रही है, वो सब हम अपने मन की बातें ईश्वर से कर सकते हैं इस दौरान। और उस अनुभूति में हम ये देखते हैं कि मानो जब हम योग में बैठे तब मन दुखी था, किसी बात से दुखी था, लेकिन जब योग की अवस्था से बाहर आते हैं उस सुख के सागर से, सुखदाता से मन जुड़ा, तो वो दुख की स्थिति सुख में बदल जाती है और अब हम वो दुख का अनुभव नहीं कर रहे होते। ऐसे ही मन किसी कारण से अशांत है तो शांति के सागर से योग लगाने के बाद हमें शांति का अनुभव होता है, अशांति समाप्त हो जाती है। ऐसे ही किसी कारण से मन उदास है, उस आनंद के सागर में मन समाया, सारी उदासी खत्म, माना मन की स्थिति का पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है योग अभ्यास के बाद। और अगर मानो आपका योग नहीं भी लगा तो भी अगर आप बैठे भी, आपने प्रयास भी किया तो भी आप अनुभव करेंगे कि मेरे मन की स्थिति पहले से कुछ बेहतर है, वो अंतर हम महसूस करते हैं। तो ये रियलाइजेशन की अवस्था जिसमें हमें एक्सपीरियंस होता है, हालांकि ये बहुत आसानी से हमें अनुभव नहीं होता, शुरू में हमें प्रयास करना पड़ता है और ये हरेक की अपनी स्थिति पर, एकाग्रता पर निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी इस अनुभव को कर पाएंगे। राजयोग के अभ्यास में कुछ भ्रम है। लोग सोचते हैं कि हमें अभ्यास करने के लिए कोई विशेष पोजीशन लेनी होगी, तो राजयोग में हमें कोई विशेष आसन लेना है, उसकी आवश्यकता नहीं। हम सहज स्थिति में, जैसे आप बैठते हैं सहज स्थिति में, अगर हम जमीन पर बैठते हैं तो सुखासन, जिसे हम आलती पालती मारकर बैठना कहते हैं साधारण भाषा में, उसे हम सुखासन कहेंगे, उसमें हम बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठकर योग करना थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो एनर्जी सर्कुलेशन होता है जिससे एकाग्रता में मदद मिलती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी तपस्वी रहे हैं वो उनको जमीन पर आसन लगा करके ही ध्यान करते हुए दिखाया गया। लेकिन अगर हम नहीं बैठ सकते, हमको शारीरिक कोई कष्ट है, मानो मेरे घुटने में तकलीफ है, मेरे कमर में तकलीफ है, कुछ भी हो सकता है, आयु हो सकती है, तो हम कुर्सी पर, सोफे पर आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। कोशिश करें कि 20 मिनट से आधा घंटा हम स्थिर होकर के बैठे, तो सहज आसन में। और अगर हमारा बैक जो है वो स्ट्रेट रहे तो वो भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कमर सीधी होने पर हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि योग अभ्यास करना माना अपने को विचार शून्य करना, क्योंकि कुछ योगी जो अभ्यास सिखाते हैं वो इस तरह का मार्गदर्शन करते हैं कि मन को पूरी तरह से विचार शून्य कर दीजिए। लेकिन मन विचार शून्य नहीं हो सकता, मन थॉटलेस नहीं हो सकता, क्योंकि मन की प्रकृति सोचने की है। आप थोड़ा समय के लिए उसको सप्रेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो और दुगनी गति से विचार करने लगेगा। एक स्प्रिंग की तरह आप स्प्रिंग को दबाएंगे, छोड़ेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगी। तो मन की गति बहुत तीव्र है और इसीलिए मन को विचार शून्य नहीं किया जा सकता। फिर ये भी सोचते हैं इसलिए हम मन को एकाग्र नहीं कर सकते, लेकिन वो अभ्यास पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम मन को अभ्यास देते जाते हैं मन एकाग्र होने लगता है। फिर ये भी प्रश्न होता है, राजयोग में जो हम योग अभ्यास करते हैं वो खुली आंखों से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि बंद आंखों से ध्यान लगता है, खुली आंखों से तो मन भटक जाता है। तो जरूर ये भी एक भ्रम है, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि खुली आंखों से हमारा मन भटकता है और बंद आंखों से हमारा ध्यान अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करें तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, क्योंकि आंखें बंद करके हम सोते हैं और सपने देखते हैं। सपने सबकॉन्शियस माइंड देखता है, उसमें बहुत सारी मेमोरीज भरी हुई हैं। तो फिर जैसे ही आपने आंखें बंद की, एक तो अगर आप थके हुए हैं तो सो सकते हैं, 5 मिनट में आप नींद में चले जाएंगे, शांति में बैठे हैं, थोड़ा सा शांति का अनुभव मिला और नींद में। और कई बार हम देखते हैं कि कई भाई बहने कहते हैं रात भर कमरे में तो नींद नहीं आई, लेकिन यहाँ जैसे ही राजयोग का अभ्यास शुरू करवाया गया 5 मिनट में नींद आ जाती है। फिर हम अगर उन स्मृतियों में चले गए जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई हैं, उनसे मन को लौटाना बहुत मुश्किल होता है। फिर से आध्यात्मिक विचारों में मन को लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम खुली आंख से योग करते हैं तो हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो होता है, दिखाई देता है क्या वस्तुएं हैं, कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन हम सब खुली आंखों से मन को कर्म में एकाग्र करने के अनुभवी हैं। और हम देखते हैं जब हमारा मन लगा हुआ होता है तो ना तो हमें सुनाई देता है ना हमें दिखाई देता है, मानो आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और आपका पूरा ध्यान उसमें है, कोई आपके पास से निकल गया और फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको पता है कौन गया यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे, मैंने नहीं देखा, आंखें तो खुली थी, क्यों नहीं देखा, क्योंकि ध्यान कहीं और था। तो अगर खुली आंखों से मेरा ध्यान कहीं और है तो हम देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि देखने वाला तो मन है, आंखों के माध्यम से देख कौन रहा है, मन देख रहा है। और अगर मन यहाँ नहीं है तो ये आंखें देखते हुए भी नहीं देखती, कान सुनते हुए भी नहीं सुनते। और राजयोग में मन कहाँ जाता है, इस भौतिक जगत से पार, हम परम धाम में चले जाते हैं परमात्मा के पास। तो जैसे ही हमारी वो एकाग्रता बनती है फिर कितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली बातें हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। और राजयोग कर्म योग है जैसे आपको बताया, तो कर्म करते हुए हम आंखें बंद नहीं कर सकते, हमेशा ही हम बैठ करके ध्यान नहीं करेंगे। कई बार तो हम इतने व्यस्त होते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता, तो हम ये एक्सक्यूज भी देते हैं कि बहुत व्यस्त है हमें टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन कर्म योग के लिए तो हमें एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको आना जाना है ही, जहां भी हम आते जाते हैं, खाना पीना हम खाते ही हैं, ये सब कर्म तो हम करते ही हैं। तो वो कर्म करते हुए जब हम भगवान को याद करेंगे तो आंखें तो हम नहीं बंद कर सकते, क्योंकि कर्म करते हुए आंखें बंद करना माना काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभ्यास ही खुली आंखों से हम करते हैं। पर हाँ, यदि अनुभव हो रहा है, कुछ अनुभव होता है हमें योग में और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये ऐसा हठ योग भी नहीं है कि हमें बिल्कुल जोर लगाकर आंखें खुली रख के ही याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो हम आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो हम आंखें खुली रख सकते हैं, पर प्रयास अधिक ये करना चाहिए कि हम खुली आंखों से योग करें, ताकि हम अलर्ट भी रहें और हमें खुली आंखों से कर्म योग करने में एकाग्रता का अभ्यास भी सहज हो। तो इसीलिए राजयोग खुली आंखों से किया जाता है। फिर जो दृष्टि हम देते हैं राजयोग अभ्यास में, ऐसा भी है कि हम दृष्टि से एक दो से शक्तियां प्राप्त करते हैं, तो वो भी तब संभव होता है जब आंखें खुली हों। कहते हैं 3 माध्यम हैं शक्तियों को देने के, एक तो आंखों से और एक हाथों से जो आशीर्वाद देते हैं, लोगों के सिर पर हाथ रखते हैं उसके द्वारा, और एक चरण, चरण छूते हैं लोग चरण के माध्यम से भी। तो ये 3 अंग ऐसे हैं जिससे शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। तो इसीलिए आंखें खुली रखने का महत्व है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी चार्ज करते हैं। योग में जो हमारी शक्तियां हमें अनुभव हो रही हैं, उससे आसपास का वातावरण भी वाइब्रेट होता है। फिर ये भी एक भ्रम है कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो बिल्कुल क्वाइट होनी चाहिए, तभी हम योग अभ्यास कर सकेंगे। तो ये तो हमेशा हमें उपलब्ध नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो कैसा भी वातावरण हो, आवाजें हो, लेकिन अगर हमारा ध्यान नहीं है, जैसे अभी हमने बात की, तो फिर हम आवाजों से ऊपर उठ जाते हैं और योग का अनुभव करते हैं। मेडिटेशन इज डिफिकल्ट, जरूर बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी बात जब हम शुरू करते हैं, जीवन में कोई भी कर्म जब हम प्रारंभ करते हैं, तो वो प्रारंभिक अवस्था में कठिन ही होता है। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो क्या एकदम फर्राटे से गाड़ी चलाने लगते हैं? चलाने लगते हैं? कैसे सीखते हैं गाड़ी? बहुत मुश्किल होती है, एक महीना लग जाता है उसको पूरी तरह से ग्रिप आने में। तो यहाँ भी ये मन की बात है, तो मन को हम कोई नई दिशा देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से शुरू में वो अभ्यास में हमें समय लगता है। मेडिटेशन इज गुड फॉर यू बट इट इज बोरिंग। किसको बोरिंग लगता है मेडिटेशन? नहीं, बहुत आनंद देने वाला, शांति देने वाला, सुख देने वाला, अगर सही विधि से हम कर रहे हैं। अगर हम मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स में मन जा रहा है, तो बात अलग है। लेकिन अगर हम सही विधि से कर रहे हैं तो मेडिटेशन हमें बिल्कुल आनंददायक अनुभव कराने वाला होता है। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी जो ये आपको प्रेजेंटेशन में विधि दिखाई गई है, हमने समझाया भी है आपको, सभी सीधे होकर बैठेंगे सहज बैठक में। और अपने मन को आसपास की आवाजों से, व्यक्तियों से न्यारा करें, मन को समेट लें और मन को तैयार करें कि अभी कुछ मिनट के लिए मुझे सिर्फ इस रूहानी यात्रा पर, जो मेरे मन की यात्रा है ईश्वर की ओर, इस यात्रा पर ही रहना है। अपने मस्तक के मध्य में स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के समान अनुभव करें। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी एक ज्योति पुंज हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं सत्चित आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए मैंने इस भौतिक देह का आधार लिया है। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों के भी पार परम धाम है। ले जाए मन को उस ज्योति के लोक में। देखें स्वयं को कि मैं परमात्मा के समीप जो मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है, स्वयं को देख रही हूँ। शिव बाबा शांति के सागर हैं, उनकी शांति के प्रकंपन मुझे भी शांति प्रदान कर रहे हैं। मेरा मन शांत होता जा रहा है, वो सर्वशक्तिवान है। मैं स्वयं में परमात्मा शक्तियों को समाता हुआ अनुभव कर रही हूँ। जब ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं, तो मैं सदा समर्थ हूँ। मेरे लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं। मैं अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहूँ ला सकती हूँ। वो परम पवित्र हैं, उनकी याद से मेरा मन पावन होता जा रहा है। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं। मुझे सत ज्ञान सद्बुद्धि देकर श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। उनके साथ के मेरे ये पल बहुत अमूल्य हैं, अनमोल हैं। मैं शिव बाबा की याद से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के दुख और अशांति जैसे समाप्त होते जा रहे हैं। शिव बाबा का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, जिन्होंने मुझे अपना बनाकर मुझे ईश्वरीय प्यार दिया है। मैं स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। बहुत न्यारापन है। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं स्वयं को पुनः इस भौतिक जगत में अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अब मेरे मन की स्थिति पहले से अधिक शांत है। मैं अपने कार्य व्यवहार में से बनाए रखूंगी।